नमस्कार भारत, 3 मार्च दिन गुरुवार, मैं हूं संदीप सोनी। संयुक्त राष्ट्र ने उत्तर कोरिया पर नए प्रतिबंध लगाए।
As the resolution that we have adopted today underscores, virtually all of the DPRK's resources are channeled into its reckless and relentless pursuit of weapons of mass destruction.
JNU छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत मिली, मां ने दी बेटे को सलाह।
गद्दार लोग से बच के रहो, अगर दोस्त भी गद्दारी करता है तो तुम उससे बच के रहो, और क्या सलाह है मां दे सकते।
छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में माओवादियों के हाथों 16 ग्रामीणों के मारे जाने की आशंका।
आप लोग घुसिए, जंगल घुसिए, पता करिए ये 16 लोग कौन है। हर मृत ग्रामीण के लिए 8 लाख रुपए सरकार देने वाली है।
होंगी और भी खबरें, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उत्तर कोरिया के खिलाफ लगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को व्यापक तौर पर और कठोर करने संबंधी एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसका कई देशों ने स्वागत किया है। नए प्रतिबंधों के तहत उत्तर कोरिया अन्य देशों से परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम के लिए कोयला, लोहा और कच्चा लोहा नहीं ले सकेगा। कथित तौर पर भारत विरोधी नारे लगाने के मामले में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र नेता कन्हैया कुमार को कल शाम दिल्ली उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई। कन्हैया कुमार की जमानत की सुनवाई करते हुए जस्टिस प्रतिभा रानी ने 23 पन्ने के अपने फैसले में कहा कि राष्ट्रद्रोह के मामले की जाँच अभी शुरुआती स्तर में है, इसीलिए उन्हें 6 महीने की अंतरिम जमानत दी गई है। ब्राजील के इतिहास के अब तक के सबसे बड़े पर्यावरण खतरे को ठीक करने के लिए देश की एक खनन कंपनी $100 करोड़ देने के लिए राजी हो गई है। यह रकम अगले 3 सालों में दी जाएगी। अधिकारियों की उम्मीद से यह रकम 1/4 से भी कम है, लेकिन कई महीनों तक खनन कंपनी स्मारकों के साथ हुई बातचीत के बाद अदालत के बाहर इस मामले पर सहमति बन पाई। कंपनी के बनाए एक बांध के टूट जाने से ब्राजील की मुख्य नदियों में से एक रियो डोशे में भारी मात्रा में मिट्टी और रसायन बह आया था, जिससे इलाके के कई गांव प्रभावित हुए थे। ब्राजील के राष्ट्रपति जिल्मा रुसेव ने इस समझौते का स्वागत किया और कहा, आपदा के 4 महीने बाद हालांकि इलाके की मुसीबतें खत्म नहीं हुई हैं, स्मारकों के साथ इस समझौते का हम स्वागत करते हैं ताकि लोगों के लिए पुनर्निर्माण का कार्य किया जा सके और नुकसान को पूरा किया जा सके, जो कि सबसे बड़ी जरूरत है। साथ ही डोशे नदी और इसमें रहने वाले प्राणियों को दोबारा लौटा लाने के लिए प्रोजेक्ट की भी जरूरत है। हम चाहते हैं कि जीवन आगे बढ़े। ये थे ब्राजील की राष्ट्रपति जिल्मा रूसेफ के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ट्यूनीशिया के सुरक्षा बलों ने कहा है कि उन्होंने 5 संदिग्ध इस्लामी चरमपंथियों को मार दिया है। बताया जा रहा है कि ये चरमपंथी लीबिया से सीमा पार कर देश में घुसे थे। सुरक्षा बलों के अनुसार बेन गुर्डन शहर में एक घर में छुपे हुए चरमपंथियों के साथ लड़ाई हुई थी, जिसमें एक नागरिक की मौत हो गई थी। इसके साथ ही 5 अन्य संदिग्ध चरमपंथियों की भी खोज चल रही है, जिन्होंने लगभग उसी समय सीमा पार कर देश में प्रवेश किया था। अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ से रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवारी के दावेदार बेन कार्सन ने संकेत दिए हैं कि वे इस दौड़ से अपनी उम्मीदवारी वापस लेने की तैयारी कर रहे हैं। एक वक्तव्य में उन्होंने कहा कि देश में सुपर ट्यूसडे प्राइमरी के नतीजों के बाद उन्हें नहीं लगता कि उनके लिए आगे राजनीतिक रास्ते खुले हैं। उन्होंने कहा कि उनका यह निर्णय वित्तीय कारणों से नहीं है, बल्कि अमरीकी लोगों के हित में है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे हैं आप संदीप सोनी के साथ, रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर और अपने मोबाइल फोन पर भी लाइव। कार्यक्रम की शुरुआत एक अंतर्राष्ट्रीय खबर से। पिछले महीने उत्तर कोरिया ने संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हुए परमाणु परीक्षण किया था। इसके जवाब में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उत्तर कोरिया के खिलाफ पहले से अधिक कठोर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। इनमें अवैध गतिविधियों में शामिल होने वाले उत्तर कोरियाई राजनयिकों को निष्कासित करने की बात भी कही गई है। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुनिए मानसी दास से।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उत्तर कोरिया के खिलाफ लगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को व्यापक तौर पर और कठोर करने संबंधी एक प्रस्ताव पारित कर दिया है। अमेरिका और चीन के बीच लंबी बातचीत के बाद इस प्रस्ताव पर मतदान हुआ, जिसे आम सहमति से पारित कर दिया गया। सुरक्षा परिषद में अमेरिकी दूत सैमंथा पावर ने मतदान के बाद कहा,
As the resolution that we have adopted today underscores, virtually all of the DPRK's resources are...
आज स्वीकार किए गए प्रस्ताव के अनुसार उत्तर कोरिया के सभी साधनों का इस्तेमाल लोगों को मारने वाले हथियार जमा करने में हो रहा है। उत्तर कोरिया की सरकार शायद अपने बच्चों से ज्यादा जरूरी समझती है परमाणु हथियारों को बढ़ाना। यही सच्चाई है जो आज हमारे सामने है। ये थे अमरीकी दूत सैमंथा पावर के शब्द। उत्तर कोरिया ने पिछले महीने ही परमाणु परीक्षण किया था, जिसके जवाब में सुरक्षा परिषद ने अपना रुख कठोर किया है। संयुक्त राष्ट्र में जापान के दूत मोटोहिदे याशिकावा ने कहा,
उत्तर कोरिया को समझना होगा कि ये संदेश उनके लिए केवल सुरक्षा परिषद के सदस्यों की ओर से ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की ओर से है। उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षण या बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च को विश्व का कोई भी देश समर्थन नहीं देता है।
ये थे संयुक्त राष्ट्र में जापान के दूत मोटोहिदे याशिकावा। संयुक्त राष्ट्र में ब्रिटेन के दूत मैथ्यू राइक्रोफ्ट ने कहा कि इस प्रस्ताव के जरिए उत्तर कोरिया पर काफी कठोर प्रतिबंध लगाए गए हैं। उन्होंने कहा,
This resolution is a step change. It contains some of the toughest measures the Security Council has ever taken.
सुरक्षा परिषद के अब तक के सबसे कठोर प्रतिबंधों में से कुछ प्रतिबंध इस प्रस्ताव में शामिल हैं। हम उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम से चिंतित हैं। इन प्रतिबंधों का ये मतलब भी है कि अब उत्तर कोरिया की सरकार के पास स्वास्थ्य और जन कल्याण के लिए पहले से भी कम संसाधन होंगे।
ये थे ब्रिटेन के प्रतिनिधि मैथ्यू राइक्रोफ्ट के शब्द। और आइए अब उन प्रतिबंधों के बारे में जानते हैं जो उत्तर कोरिया पर लगाए गए हैं। अब परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम के लिए उत्तर कोरिया किसी देश से कोयला, लोहा और लौह अयस्क नहीं ले सकेगा। उत्तर कोरिया किसी देश से सोना, कच्चा टाइटेनियम, कच्चा वैनेडियम और दुर्लभ खनिज पदार्थ भी नहीं ले सकेगा। अब कोई देश उत्तर कोरिया को विमान ईंधन और रॉकेट में इस्तेमाल होने वाले अन्य तरह के ईंधन नहीं बेच सकेगा। दूसरे देशों में, खासकर अफ्रीका में चल रहे उत्तर कोरिया के प्रशिक्षण शिविर बंद किए जाएंगे। उत्तर कोरिया को महंगे सामान जैसे कि महंगी घड़ियां, स्नोमोबाइल और खेल के अन्य सामान की बिक्री पर भी रोक लगाई गई है। नए प्रतिबंधों के तहत उत्तर कोरिया में परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम संबंधी कंपनियों के खाते सील किए जा सकते हैं। इसके साथ ही उत्तर कोरिया से आने जाने वाले सभी कार्गो की जांच पड़ताल की जाएगी। इसके अलावा 16 व्यक्तियों और 12 अन्य संगठनों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। नए प्रतिबंधों पर उत्तर कोरिया की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
सुरक्षा परिषद ने उत्तर कोरिया पर नए प्रतिबंध लगाए। रिपोर्ट सुना रही थी मानसी दास।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में इस वर्ष 9 फरवरी को हुए एक कार्यक्रम से उपजे विवाद पर भारत में काफी बहस हो चुकी है और इसी मुद्दे पर अमेरिका में भी बहस जारी है। इस सिलसिले में विरोध प्रदर्शन भी आयोजित किया गया, जिसमें अमेरिकी छात्रों, अध्यापकों समेत भारतीय मूल के कई अमेरिकी नागरिकों ने भी भाग लिया। इनमें से कुछ लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग देश विरोधी नारे लगाने वालों के लिए सजा चाहते हैं। न्यूयॉर्क से सलीम रिजवी।
जेएनयू के विवाद पर अमेरिका में भी विरोध प्रदर्शन और बहस हो रही है। कुछ लोगों का ख्याल है कि छात्रों को यूनिवर्सिटी परिसर में अपने विचारों को खुलकर रखने की आज़ादी होनी चाहिए, तो कुछ का कहना है कि देशद्रोही विचारों के लिए कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों और अध्यापक समेत कई मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने न्यूयॉर्क में जेएनयू के छात्रों की हिमायत में एक विरोध प्रदर्शन भी किया। विरोध प्रदर्शन के एक आयोजक सुधांशु कौशिक का जन्म अमेरिका में ही हुआ। वो न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के छात्र हैं।
जब स्टूडेंट्स को कुछ गलत और सही लगता है तो वो बोलेंगे, वो प्रोटेस्ट करेंगे, वो अपनी आवाज उठाएंगे, मगर चुप रहना उनको भाई कोई उनकी आवाज उठाने के लिए भाई सजा करना, उनको जेल में डाल देना, मारना पीटना, मुझे तो पढ़ाया नहीं गया था भाई डेमोक्रेसी में ऐसा होता है। जो युवा हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जेएनयू में, वो हमारे जैसे ही हैं।
लेकिन कुछ भारतीय मूल के अमरीकी लोगों का मानना है कि भारत में देशद्रोह के नारे लगाने की आजादी नहीं होनी चाहिए। न्यूयॉर्क में पेशे से डॉक्टर राज गुप्ता 2 दशक से अधिक समय से अमेरिका में रह रहे हैं। वो कहते हैं,
जिस देश में रहो उसका खाना पीना कर रहे हो तो वहाँ का तो उसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। ये क्या पाकिस्तान में ऐसा हो सकता है, सऊदी अरेबिया में हो सकता है, ईरान में हो सकता है, इराक में हो सकता है, नहीं होगा, कहीं नहीं होगा, यहाँ हो सकता है, अमेरिका में नहीं, तो वहाँ क्यों हो रहा? आप सऊदी अरेबिया में देखिए फांसी दे देंगे, पाकिस्तान में फांसी दे देंगे, तो सेडिशन चार्ज क्या है? कुछ नहीं, इन लोगों को मौत में घाट उठा दे उतरना चाहिए।
भारतीय संसद पर हमलों के दोष में फांसी पर चढ़ाए गए अफजल गुरु की याद में जेएनयू में 9 फरवरी को मनाए गए एक समारोह में कथित तौर पर भारत विरोधी नारे लगाए गए थे। उस सिलसिले में जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार समेत कई छात्रों को गिरफ्तार भी किया गया। कन्हैया कुमार को दिल्ली हाईकोर्ट ने तो अंतरिम जमानत दे दी है, लेकिन भारत के साथ साथ अमरीका में भी देशद्रोह और अभिव्यक्ति की आजादी जैसे मुद्दों पर बहस छिड़ी हुई है। मूल रूप से भारत के उत्तर प्रदेश के रहने वाले शेर बहादुर सिंह अमरीका में 30 वर्षों से रह रहे हैं और रिटायर हो चुके हैं।
इनको छोड़ देना चाहिए, गलती बच्चे हैं, सबको छोड़ देना चाहिए, कोई सजा नहीं करें, अब तक बहुत हो गई सजा उसकी। बात उनकी गलत थी, जो देश के खिलाफ लगाए वो गलत थे, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाए।
अमेरिका में रहने वाले कुछ भारतीय मूल के युवा तो छात्रों के खिलाफ सिरे से ही किसी कार्रवाई का विरोध करते हैं। न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय की छात्रा सुमंती कुमार भी जेएनयू के छात्रों के हक में विरोध प्रदर्शन में शामिल थी। सुमंती कुमार कह रही थी, मैं खुद एक मानवाधिकार कार्यकर्ता हूं और हम तो अपने विरोध करने के हक को सामान्य तौर पर लेते हैं। अमेरिका में भी कभी कभार छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश की जाती है, लेकिन हमारे पास उसका विरोध करने और जोर शोर से आवाज उठाने के विकल्प भी मौजूद हैं। मुझे लगता है कि भारत में छात्रों के पास आवाज उठाने के कम विकल्प हैं। सुमंती कुमार कहती हैं कि छात्रों के खिलाफ देशद्रोह के आरोप तो आजादी के पहले के कानून के तहत लगाए गए हैं और ऐसे कानून पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। अमेरिका में जेएनयू के विवाद पर समाचार पत्रों में भी खासी चर्चा हो रही है और कुछ समाचार पत्रों में इसको भारत में अभिव्यक्ति की आजादी और इससे जुड़े मानवाधिकारों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
कार्यक्रम में आगे सुनेंगे देशद्रोह के मामले में गिरफ्तार किए गए जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद उनकी मां मीना देवी का क्या कहना है, लेकिन पहले बात संसद की, जहां कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
वायदों का जाल बिछाया मोदी जी ने, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा, और फिर सवाल उठने लगे। पहला सवाल रोहित वेम्युला ने पूछा, मेरी क्या गलती है, मैं दलित हूं इसलिए मुझे क्यों मारा जा रहा है, क्या मेरे लिए भविष्य नहीं होना चाहिए, और आप लोग क्या करते हो, हिंदुस्तान की सरकार की शक्ति उसके कंधों पर ऐसे दबा देते हो। सवाल यह है कि हिंदुस्तान के एक युवा की जिंदगी को ऐसे खत्म क्यों किया गया। जेएनयू में कन्हैया खड़ा होता है, 20 मिनट में उसने हिंदुस्तान के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा, उसको आप अरेस्ट करते हो, आप ना जेएनयू को कुचल पाओगे, ना इस देश के गरीब लोगों को।
संसद में राहुल गांधी के आक्रामक तेवर के पीछे कांग्रेस की रणनीति क्या है, भाजपा की वो कौन सी नस है जिसे कांग्रेस दबाने की कोशिश कर रही है, यही जानने के लिए हमारी सहयोगी सुशीला सिंह ने वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता से बात की।
बीजेपी की अपनी स्ट्रेटेजी रही है कि किसी तरह से कांग्रेस को उन पुराने सारे मामलों में घेरा जाए, और इसीलिए एक के बाद एक, आप चाहे वो जेएनयू का मामला भी हो, उसमें भी सरकार कुछ हद तक तो उसमें कन्हैया की रिहाई के बाद थोड़ा सा उसके लिए एम्बेसिंग होगा, लेकिन शुरुआत उस मुद्दे को राष्ट्रवाद का मुद्दा बनाने की जो कोशिश हुई है, काफी हद तक मैं मानता हूं कि उसका एक असर एक बड़े वर्ग में हुआ होगा। उसके बाद ठीक है, जो छात्रों के बीच पे जो उसकी क्रेडिबिलिटी गिरती है, ये तो आगे आने वाले समय में और ज्यादा बताएगा। मुझे लगता है कि दोनों तरफ से जितना ज्यादा टकराव का, पहले उम्मीद की जा रही थी कि टकराव कम होगा, लेकिन वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस की रणनीति यही है कि भाई आप जितना बचाव भी करें और आगे ऐसा लगे कि भाई हम किसी तरह से आगे एक विकल्प के रूप में उपस्थित रह सकते हैं। अभी तक तो चूंकि लगातार बचाव कांग्रेस को करना पड़ रहा है, और भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार आक्रामक अपनी बार बार कोशिश कर रही है, जिससे कि वो पिछली सरकार को ही नए नए मुद्दों पर, चाहे चिदम्बरम के पुत्र का मामला हो, चाहे शाहजहां का मामला हो, एक जनरल मासेस में जो असर होता है उसमें भारतीय जनता पार्टी उस नस को पकड़ने की कोशिश कर रही है। जो एक जमाने में हम लोग ये मानते थे कि इंदिरा गांधी जब कहती थी कि सांप्रदायिक लोग हैं, उस मामले में जब इस नेशनल सिक्योरिटी थे, अब भ्रष्टाचार और राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपना पलड़ा भारी रखने की कोशिश कर रही है।
जी आलोक जी, अगर राहुल गांधी की बात की जाए तो कल लोकसभा में वे काफी आक्रामक दिखे, साथ ही लग रहा था जैसे काफी तैयार होकर आए हैं।
मुझे लगता है कि 2014 के चुनाव से लेकर आज तक का जो उनका रहा, जिसका ज्यादा असर नहीं होता था, और कांग्रेस जन्मे भी उसको लेकर के कांग्रेस के कई नेताओं से जो बंद कमरे में या ये कहना चाहिए कि सामने जो स्क्रीन पर आकर के नहीं बोलते, वो लोग भी राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर के उनको भी कहीं ना कहीं शंकाएं बनती थी। तो लोकसभा में जिस ढंग से तैयारी से आए वो सही है कि बिना तैयारी के वो कई बार गड़बड़ाए भी हैं, थोड़ा सा मनरेगा या दूसरे शब्दों को लेकर के कहीं कहीं उन गड़बड़ हुए, लेकिन फिर भी तैयारी के साथ जितना आक्रामक ढंग से, व्यंग्यात्मक ढंग से भी, और ये मानते हुए कि हमने गलतियां भी की, कमजोरियां की, जो मैं मानता हूं कि जो पुराने नेता नेहरू से लेकर के राजीव गांधी तक थे, जिन लोगों की परंपरा थी कि यदि कुछ कमियां रही हैं तो उसको स्वीकार करें, शायद उस सबसे सबक लेकर के और पूरी तैयारी से उन्होंने अपनी मानी, और साथ में सबसे आक्रामक जो उन्होंने बातें कही कि आपने सुषमा जी, राजनाथ सिंह, अडवाणी, इन सबको जो इग्नोर किया है, आप उनकी बात भी सुना करें, जो एक व्यक्तिवादी राजनीति की तरफ, वो अलग बात है कि कांग्रेस में भी व्यक्तिवाद कहा जाता था, लेकिन समय यह है कि प्रधानमंत्री के हाथ पे सब कुछ कमान है, उस पर उन्होंने दूसरे ढंग से निशाना बनाया। उन्होंने जोर इस बात पर दिया कि प्रधानमंत्री अपनी मर्जी के ही सब फैसले कर रहे हैं, उसका देश को नुकसान हो रहा है। तो अभी भी कांग्रेस में उम्मीद देखते थे कि नहीं, जितना हमें नहीं मिल रहा है, चाहे वो पूंजीपति हो चाहे वो मजदूर हो, उनके बीच में फिर से राहुल गांधी ने कांग्रेस के लिए एक जगह बनाने की पहली कोशिश, मैं मानता हूं इसे।
वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता। और अब बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की, जिन्हें भारत विरोधी नारे लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जिन्हें कल दिल्ली हाईकोर्ट ने 6 महीने के लिए जमानत पर छोड़ने का फैसला सुनाया। इस घटनाक्रम पर हमारी सहयोगी सुशीला सिंह ने कन्हैया की माता मीना देवी से बात की।
उम्मीद तो थी जो बरी हो जाए मेरा बेटा, क्योंकि निर्दोष है, लेकिन नहीं बरी हुआ, तो ये तो पहली जीत है और आगे भी होगा, जो प्रोसेस होगा उसमें कानूनी कार्रवाई में, तो संविधान पर पूरा भरोसा है। तो हम लोग तो पूरा दुखी थे, इतना दिन से बेचैन थे, लेकिन अभी खुशी का है समय, खुश हूँ।
ये बताइए मीना जी कि जब आपके बेटे कन्हैया कुमार पर देशद्रोह के आरोप लगे तो आपके दिल में क्या चल रहा था, क्योंकि वो तो जेएनयू पढ़ने गए थे।
दिल में तो यही चल रहा था जो एक इंसान का बेटा गलत रास्ता में नहीं जा सकता है, लेकिन उसको साजिश के तरफ फंसाया गया है। हमेशा अपने बेटे पर भरोसा था।
जब पुलिस ने उन्हें पकड़ा तो उससे पहले क्या बातचीत हुई थी आपकी अपने बेटे कन्हैया कुमार से?
जी नहीं, पहले हुई थी, कुछ दिन पहले, कुछ पर्व का अवसर था, इसी में हुई थी।
जब ये पूरा जेएनयू का प्रकरण चल रहा था तो उस दौरान क्या बात हुई थी आपकी अपने बेटे से?
जी नहीं, एकाएक हुआ तो हम लोग वहाँ का समाचार कैसे जानते, तो था नहीं सब।
ये जो जेएनयू का जो पूरा मामला है, ये लगातार सुर्खियों में छाया रहा, टीवी चैनल पे भी आपने देखा होगा, तो उस समय आप क्या करती थी, कभी मन होता था कि अपने बेटे से बात करें?
लाचार थी, बात नहीं कर पाती, कैसे करती, मन तो करता था।
बेगूसराय के बिहट गांव में रहती हैं, जब ये पूरा मामला उफान पर हुआ तो आसपास के लोग भी आपसे मिलने आते होंगे, क्या कहते थे लोग आपको आके?
जो लोग आते थे अगल बगल के गांव के भी, मेरे गांव के भी जो आते थे, और रिश्ता और संबंधी तो आते ही थे, सबका यही था कहना, जो एक निर्दोष बच्चा जब बाहर पढ़ने गया तो गरीब है या बिहार का, इसलिए उसको फंसाया जा रहा है।
अब जमानत पर छूट के बाहर आएंगे तो आप उनसे बात करेंगी, तो आप क्या कहने वाली हैं उनसे?
कहेंगे आओ समय निकाल करके मिलने के लिए।
क्या किसी तरह की सलाह भी देंगी उन्हें?
हाँ देंगे सलाह।
क्या सलाह देंगी आप उन्हें?
सलाह देंगे जो गद्दार लोग से बच के रहो, अगर दोस्त भी गद्दारी करता है तो तुम उससे बच के रहो, और क्या सलाह है मां दे सकते।
जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिली, मां ने दी बेटे को गद्दारों से, दोस्तों से बचने की सलाह।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 19, 25, 41 और 49 मीटर बैंड, यानी 5980, 7395, 11995, 15510 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
कार्यक्रम में आगे अखबारों की सुर्खियां और खेल की खबरें, लेकिन पहले बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में पुलिस का कहना है कि राज्य के नारायणपुर जिले में संदिग्ध माओवादियों ने जिन ग्रामीणों की हत्या की है उनकी संख्या बढ़कर 16 हो गई है। हालांकि पुलिस अभी तक उस इलाके में नहीं पहुंच पाई है जहां की ये घटना बताई जाती है। रायपुर से आलोक पुतुल की रिपोर्ट।
नारायणपुर वो इलाका है जहां माओवादियों की मजबूत उपस्थिति मानी जाती है। खबर आई कि अबुझमाड़ के नेतानार, अलबेड़ा, परपा, कुंदला और मटबेड़ा गांवों में माओवादियों ने कुछ ग्रामीणों की हत्या कर दी है। जब हमने इस बारे में नारायणपुर के पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा से बातचीत की तो उन्होंने 4 ग्रामीणों के मारे जाने की पुष्टि की, लेकिन उन्होंने यह आशंका भी जताई कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। जगदलपुर में बस्तर के आईजी पुलिस शिवराम प्रसाद कल्लूरी ने नारायणपुर के पुलिस अधीक्षक के हवाले से ही दावा किया कि जिन ग्रामीणों की हत्या कथित माओवादियों ने की है उनकी संख्या 16 तक पहुंच गई है।
कल से लगातार मैं एसपी नारायणपुर से मेरा बातचीत चल रहा है। पहले मेरे को खबर मिला था कि 3 ग्रामीणों को नारायणपुर जिले में अबुझमाड़ इलाके में माओवादी मारे हैं। फिर शाम तक 3 की संख्या बढ़ के 11 हो गया। फिर एसपी मेरे को कहा है कि सर संभवतः ये संख्या 16 हो गई है।
हालांकि पुलिस अभी तक उन इलाकों में नहीं पहुंच पाई है जहां माओवादियों ने कथित रूप से 16 आदिवासियों की हत्या की है। आईजी पुलिस शिवराम प्रसाद कल्लूरी ने मानवाधिकार संगठनों और मीडिया से ही उन ग्रामीण इलाकों में जाने की बात कही।
मैं आपसे भी और नारायणपुर के मीडिया बंधुओं से भी आग्रह करता हूँ, आप लोग घुसिए, जंगल घुसिए, पता करिए ये 16 लोग कौन है। पता करना इसलिए आवश्यक है, हर मृत ग्रामीण के लिए 8 लाख रुपए सरकार देने वाली है।
बस्तर में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और वकीलों के खिलाफ दुर्भावनावश कार्रवाई का आरोप झेल रहे आईजी पुलिस शिवराम प्रसाद कल्लूरी के निशाने पर आज मानवाधिकार संगठन भी थे।
16 आदिवासियों को, 16 बस्तर के ट्राइबल्स को नक्सलियों ने मारे हैं। तथा कथित मानवाधिकारी संगठन जो सिर्फ टेररिस्ट, माओइस्ट और प्रोहिबिटेड ऑर्गेनाइजेशंस का मानवाधिकारों की बात करता है, वो सब जाए अबे अबुझमाड़। ये 16, 17, 20 आदिवासियों को जो मारे हैं, उनको कोई मानवाधिकार नहीं है।
हालांकि मानवाधिकार संगठन PUCL ने आईजी पुलिस के दावे पर ही सवाल खड़े किए हैं। छत्तीसगढ़ में PUCL के अध्यक्ष डॉक्टर लाखन सिंह ने पुलिस से इस घटना की पुष्टि करने की बात कही।
और ये घटना 2 दिन पुरानी है, अभी तक पुलिस ये कहने स्थिति में नहीं है कि वे कौन लोग मारे गए हैं, किन किन को मारा गया है, 15 हैं कि 16 हैं कि 20 है। मेरा कहना है कि पहले पुलिस वेरीफाई करे, जहाँ घटना हुई वहाँ पुलिस जाए, पता लगाए। PUCL जैसा ऑर्गेनाइजेशन है हर प्रकार की हिंसा के खिलाफ है, चाहे पुलिस हिंसा करे या माओवादी हिंसा करे, और कम से कम पुलिस हमें ये ना सिखाए कि मानवाधिकार क्या होता है, पहले वो अपना प्रारंभिक काम कर ले।
आईजी पुलिस SRP कल्लूरी ने दावा किया है कि पुलिस जल्दी ही उन इलाकों में पहुंचेगी जहां ग्रामीणों की हत्या हुई है। हालांकि ग्रामीणों की कथित हत्या की खबर के 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन प्रभावित गांवों में पुलिस का न पहुंच पाना यह तो बताता ही है कि पुलिस के दावे के उलट माओवादियों से लड़ाई का रास्ता आसान तो नहीं ही है। आलोक पुतुल, BBC छत्तीसगढ़।
आज है 3 मार्च, दिन गुरुवार। BBC हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे हैं आप संदीप सोनी के साथ। घड़ी में वक्त हुआ है 6:52। कार्यक्रम में वक्त हो चला है दिल्ली से छपने वाले अखबारों की सुर्खियां जानने का। मानसी दास अखबारों के साथ स्टूडियो में आ चुकी हैं।
संदीप जी, आपको बता दूं, आज लगभग सभी अखबारों में JNU छात्र संघ के नेता कन्हैया कुमार की जमानत की खबर और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के आक्रामक तेवर और प्रधानमंत्री मोदी पर हमले की बात को प्रमुखता से छापा गया है। नई दिल्ली ने छापा है राहुल गांधी की एक तस्वीर को और साथ में लिखा है कि उनके बजट में घोषित कालाधन उजागर करने की योजना का मखौल उड़ाया है उन्होंने और कहा है कि यह योजना फेयर एंड लवली जैसी है। उधर अखबार में एक और खबर में छापा है कि राजस्थान के एक विधायक भवानी सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी ने JNU में जो भाषण दिया उस पर उनकी ज़ुबान काट ली जानी चाहिए, हालांकि बाद में उन्होंने अपना भाषण वापस ले लिया है। जनसत्ता में एक खबर छपी है कि छात्र नेता कन्हैया को अंतरिम जमानत मिल गई है और अदालत ने उन्हें निर्देश दिया है कि किसी भी राष्ट्र विरोधी गतिविधि में वे हिस्सा ना लें। इकोनॉमिक टाइम्स की एक खबर पढ़ती चलूं जिसमें आप सभी की दिलचस्पी होगी, कॉल ड्रॉप से संबंधित है खबर। भारतीय टेलीकॉम नियामक ट्राय ने फोन कंपनियों को कॉल ड्रॉप होने पर उपभोक्ताओं को मुआवजा देने संबंधी मामले में सोमवार तक कंप्लायंस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है।
मतलब सोमवार तक बताना है कि अपने अब तक इस मामले में क्या करने वाले हैं।
टेलीग्राफ ने एक खबर छापी है जिसमें वित्त मंत्री अरुण जेटली और मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी की तस्वीर छापी है और खबर दी है कि प्रोविडेंट फंड पर टैक्स लगाने के मामले में भाजपा सरकार को भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। उधर अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर की ओर भी ध्यान खींचना चाहूंगी। खबर है कि दक्षिण दिल्ली में कार पार्क करने का खर्च जल्द ही बढ़कर 100 रुपये प्रति घंटे तक हो सकता है। ऐसा कार पार्किंग की बढ़ती जरूरत को देखते हुए किया गया है, लेकिन अभी यह मात्र एक प्रस्ताव है। जनसत्ता की एक और खबर है कि उच्चतम न्यायालय ने डांस बारों के मामले में अहम फैसला देते हुए कहा है कि कुछ शर्तों का अनुपालन करने पर डांस बार मालिकों को लाइसेंस दे दिया जाए। कोर्ट ने कहा है कि सीसीटीवी फुटेज पुलिस को नहीं दिए जाने चाहिए और सीसीटीवी कैमरे केवल प्रवेश द्वार पर लगाए जाने चाहिए, ना कि बार में कार्यक्रम होने वाली जगह पर।
यानी डांस बार के अंदर क्या हो रहा है वो पता नहीं चलेगा।
जी, ये भी कि सीसीटीवी कैमरे में उस समय की रिकॉर्डिंग किसी पुलिस के हाथ नहीं आएगी। अब महिलाओं के लिए एक खबर पढ़ती चलूं। ब्रिस्टल की एक निजी कंपनी ने महिला कर्मचारियों के लिए एक अनूठी पहल की है। इस पहल का नाम है पीरियड पॉलिसी। इसके तहत महिला कर्मचारियों को हर माह मासिक धर्म के दौरान छुट्टी दी जाएगी।
बहुत शुक्रिया। और आगे बाकी हैं खेल समाचार, लेकिन पहले वो खबरें जिन पर आज रहेगी हमारी नजर।
उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए होने वाले चुनावों में भारतीय निर्वाचन आयोग आज पहली बार संवेदनशील मतदान केंद्रों से वोटिंग का सीधा वेब प्रसारण करेगा। 6 करोड़ रुपए के लुई बर्जर घूस मामले में गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत की अग्रिम जमानत खारिज करने संबंधी याचिका पर अदालत में आज सुनवाई हो सकती है। जस्टिस लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों पर उच्चतम न्यायालय में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की ओर से जवाब देने की समय सीमा आज खत्म हो रही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC की ओर से जारी निर्देश के अनुसार भारत के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आज मातृभाषा दिवस मनाया जाएगा। मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बनाने वाली चीनी कंपनी शाओमी आज भारत में रेडमी नोट 3 लॉन्च कर रही है। आज विश्व वन्य जीवन दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष इसका विषय है हमारे वन्य जीवन का भविष्य हमारे हाथों में है, जिसमें अफ्रीकी और भारतीय हाथी को बचाने पर जोर दिया जाएगा। खेल जगत की बात करें तो एशिया कप क्रिकेट में आज भारत और संयुक्त अरब अमीरात की टीमें आमने सामने होंगी।
और अब खेल समाचार विस्तार से।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं रजत चांदना। सबसे पहले बात क्रिकेट की। कल ढाका में मेजबान बांग्लादेश ने दी पाकिस्तान को 5 विकेट से मात और एशिया कप के फाइनल में प्रवेश किया।
ये दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला जीते हैं पाकिस्तान के साथ। इतिहास, बांग्लादेश इस मुकाबले को 5 विकेट से जीतकर एशिया कप के फाइनल में अपनी जगह पुख्ता कर चुका है।
पाकिस्तान के 130 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही बांग्लादेश की टीम ने 19.1 ओवर में मैच जीत लिया और पाकिस्तान एशिया कप से बाहर हो गई। बांग्लादेश के लिए सौम्य सरकार ने 48 रनों की पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 1 छक्का शामिल था। इससे पहले पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पाकिस्तान की शुरुआत अच्छी नहीं हुई और 18 रनों पर 3 विकेट गिर गए। उसके बाद सरफराज अहमद और शोएब मलिक ने पाकिस्तान के लिए नबाद 58 और 41 रनों की पारी खेली और पाकिस्तान ने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 129 रन बनाए। बांग्लादेश अब फाइनल में भारत से भिड़ेगा। वहीं भारत आज एशिया कप के T20 के आखिरी ग्रुप मुकाबले में संयुक्त अरब अमीरात से भिड़ेगा। इससे पहले भारत अपने तीनों मुकाबले जीतकर फाइनल में जगह पहले ही बना चुका है और वरिष्ठ खेल पत्रकार विजय लोकपल्ली का मानना है कि ये मुकाबला भी भारत आसानी से जीत लेगा।
भारत का फाइनल में खेलना तो तय है और UAE का इस टूर्नामेंट में आगे कोई जगह बनाना वो भी तय है, क्योंकि भारत अपने तीनों मैच जीता है और UAE तीनों मैच हारा है। और ये कोई मुकाबला होगा ही नहीं, क्योंकि भारत इसमें कोई दोहराएंगे कि बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है इस टूर्नामेंट में, तो आप सिर्फ एक फॉर्मेलिटी की वजह से कहेंगे कि आपको मैच खेलना पड़ेगा। जहां तक धोनी का सवाल है, वो बहुत कम जो है छेड़छाड़ करते हैं विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ और मुझे लगता नहीं कि धोनी इसमें कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे।
उधर बैडमिंटन में जर्मन ओपन में भारत के किदांबी श्रीकांत और पारुपल्ली कश्यप ने पुरुष सिंगल्स के दूसरे राउंड में प्रवेश किया। भारत के किदांबी श्रीकांत ने जापान के ताकुमा उएडा को 2-21, 21-18 और 21-11 से मात दी। वहीं पारुपल्ली कश्यप ने पहले राउंड में यूक्रेन के आर्तेम पोस्त्रोव को 21-9, 21-9 से हराया। वहीं हॉकी में भारतीय महिला हॉकी टीम ने दक्षिण अफ्रीका दौरे के अंतिम मैच में स्कॉटलैंड को 3-0 से मात दी और कुआलालंपुर में भारतीय महिलाओं ने वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप के मुख्य ड्रॉ में जगह बनाई। भारत की मोनिका बत्रा, के शामिनी और मोमा दास ने अपने मुकाबले जीते और क्रोएशिया को 3-0 से मात दी।
कार्यक्रम के समापन से पहले विश्व समाचार एक बार फिर मानसी दास से।
बीबीसी समाचार। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उत्तर कोरिया के खिलाफ लगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध को व्यापक तौर पर और कठोर करने संबंधी एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसका कई देशों ने स्वागत किया है। कथित तौर पर भारत विरोधी नारे लगाने के मामले में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र नेता कन्हैया कुमार को कल शाम दिल्ली उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई। अरब लीग के आंतरिक मामलों के मंत्रियों ने लिबनानी इस्लामी शिया गुट हिजबुल्ला को चरमपंथी समूह बताया है। यह फैसला गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की बैठक के बाद लिया गया। अमरीकी शोधकर्ताओं का कहना है कि रक्तचाप मापने के लिए बनाया गया एक लोकप्रिय ऐप गलत आंकड़े बता रही है और इस्तेमाल करने वालों को गुमराह कर सकती है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में इतना ही। कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद कर रहे थे हेमंत कुशवाहा। ठीक एक घंटे के बाद विश्व भारती में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत।